चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. रंजो अलम, ना शरण मतलूब है ना असलन मकसूद. यानी हर वक्त दुखी रहना या रंज और गम में, ना तो इस पे अल्लाह ने हमें हमेशा रखा है कि आप ऐसे रहें या नहीं. कैसे? आइए कुरान पाक की चंद आयतों का तर्जमा देखते हैं, तो आप इसको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जो आपको ना समझ आ सका फिर वो मैं बताने की कोशिश करूँ. रंजो अलम से अल्लाह ताला ने मना किया है. क्या फरमाया? ना कमज़ोर बनो ना गम करो. सूरत आल इमरान 139 है. कई जगह ये कहा, इन पर अफसोस ना कीजिए, फला तासा, गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है, जो हमारी इस फेवरेट सीरीज का मेन थीम है. ला तहसन इन्नल्लाह माना, सूरत तौबा आयत 40. फिर इसी तरह, ना इन पर खौफ होगा ना वो गम करेंगे, सूरत बकरा 38, जो पहले दिन की आयत थी. जन्नत से निकलने के बाद यही तो कहा गया. तो हुजन क्या है? लिखिए, तलब के शोले का ठंडा पड़ जाना, हिम्मत में फतूर पैदा होना, हरारत कम हो जाना. ये ऐसा बुखार है जो जिंदगी को शल कर देता है. इसका राज क्या है? हुजन एक अच्छी अलामत नहीं, ना इसमें दिल की मसलहत है. शैतान को ये बहुत पसंद है कि बंदे को गमगीन करके इसको रास्ते से रोक दे और मुनहरिफ कर दे. जैसे कि फरमाया, बुरी सरगोशी शैतान की तरफ से है ताकि अहले ईमान गमगीन हो जाएं. सूरत मुजादला 10 है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया कि तीन लोगों में से दो तीसरे को छोड़कर सरगोशियां करने लगे, क्योंकि इससे उसको रंज होगा. मुसलमान हुजन में मुबतला हो ये शरीयत नहीं चाहती, क्योंकि इसका बुरा असर रूह पर पड़ता है. मुसलमान से तो शरीयत का मुतालबा ये है कि हुस्न व मलाल को पास ना आने दें, इसका मुकाबला करें और अच्छे जराए से इस पर गलबा पा ले. हुस्न व मलाल ना मतलूब है ना मकसूद. यानी अल्लाह ये नहीं चाहते कि मुसलमान दुखी रहें और डिप्रेस रहें. तो याद रखिए, मुसलमान कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा. जहाँ भी जाता है उसमें कोई ना कोई कमी बेशी होती है. ना इसमें कोई फ़ायदा है. अल्लाह के नबी सल्लम ने इससे पनाह मांगी. क्या फरमाया? अल्लाह में हुस्न व मलाल और तफक्कुरात से तेरी पनाह चाहता हूँ. रंजो गम में फ़र्क ये है, मुस्तकबिल की फिक्र परेशान करती है तो इसे हम कहते हैं, और माजी की गमनाक बात हो तो हुस्न कहलाती है. और अक्सर देखिए, जो लोग गमजदा होते हैं वो माजी के ही किसी वाक़े को याद कर कर के दुखी होते हैं. दोनों ही बातें आदमी को आगे बढ़ने से रोकने वाली हैं. हुजन से ज़िंदगी मकदर हो जाए. मकदर जो होता है ना, गंदेपन को कहते हैं. खिदर, कदूरत का लफ्ज़ भी इसी से है. गंदगी, गंदापन. मड्डी नहीं होता पानी, यानी गंदगी वाला पानी. ये एक ऐसी जहरनाक चीज़ है कि रूह में फतूर, हैरत और मलाल पैदा होता है. कितनी ही खूबसूरत चीज़ों का सामना हो, इसके सबब वो भी तारीक लगने लगेगी. ज़िंदगी की सारी खुशी और मुसर्रत हसरत व नदामत और अलमनाकी से बदल जाती है. हाँ, अगर हुस्न व मलाल लाहक ही हो जाए, जैसा कि इंसानी फितरत का तकाजा है. यानी हो जाता है डिप्रेशन अगर कभी, तो क्या कीजिए? तो इसे दुआओं से और मुनासिब ज़राए के इस्तेमाल से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. इसके लाहक हो जाने पर बंदे को सवाब मिलेगा, क्योंकि फितरी चीज़ है. और इसकी दलील ये है कि जन्नती जन्नत में दाखिले के वक्त कहेंगे, जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्खबन अलहज़न. सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने हमसे हुज़न को दूर कर दिया. इससे ये जाहिर होता है कि दुनिया में इनको हुज़न लाहक हुआ करता था, जैसा कि अक्सर ऐसे मसाइब आते हैं जिन पर आदमी का इख्तियार नहीं होता. अलबत्ता ये सवाल उठता है कि आयात व अहादीस में तो हुजन की तारीफ़ की गई. मसलन कुरान पाक में आया, और न इन पर कोई हरज है जो जंग में जाने के लिए आपके पास आए, मगर सवारी न होने की वजह से आपने इनसे जब माजरत की तो वो हुस्न व मलाल के मारे आंखों में आंसू लिए हुए वापस हो गए. याद आ गया आपको सूरह तौबा 92, गज़वे तबूक में जो नहीं जा सके थे उनकी बात है. तो क्या फिर ये अच्छा है कि बुरा है? तो बात ये है कि यहाँ नफ्स से हुजन की तारीफ नहीं, बल्कि हुजन की ये कैफियत जो मोमिनीन की कुव्वत ईमान पर दलील थी, इस पर इनकी तारीफ की गई. यानी मोमिन नेकी के मौक़ों से पीछे रहने पर रोता है, इस पर तो दुखी होना चाहिए. और मुनाफिक पर तारीज़ है, जिन्होंने मोमिनीन के वापस होने पर बगलें बजाई थी. यानी जो नेकी के मौके पर पीछे रह जाएं और बाद में बुरी खबर सुनने के मंतजरों के वहाँ गए और इनके साथ बड़ा बुरा मामला हुआ, ये मुराद है. लिहाजा हुजन महमूद हो, अच्छा पसंदीदा वो है. कौन सा हुजन महमूद है? जो किसी इबादत और इताअत के काम के फौत होने या किसी गुनाह में पड़ जाने के सबब हो. खुद से पूछिए, कभी इस डिप्रेशन का भी शिकार हुई हूँ कि नमाज कज़ा हो गई, क्लास छूट गई। क्योंकि इस सूरत में बंदे का अपने गुनाह और ख़ता कारी पर हुज़न इसकी दलील है कि वो ज़िंदा है, इसे हिदायत की तौफीक मिल सकती है। एक हदीस में मा युसीबुल मोमिनो मिन हम्मे वला नसबिन वला हुज़न इल्ला कफ़रल्लाहु बिही मिन ख़ताया। मोमिन को जो भी तफक्कुर रंजो गम पहुँचता है इसके बदले अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ फरमाएगा। तो इसका मतलब यह कि हुज़न एक मुसीबत है, बंदे ने इस पर सब्र किया लिहाजा वो गुनाहों का कफारा बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुज़न कोई अच्छी सिफत है जिसे हासिल करना चाहिए, लिहाजा बंदा ना हुज़न की तलब और दुआ करे, ना इसे इबादत ख्याल करे, ना ये समझें कि अशारे ने इस पर उभारा है, इसका हुक्म दिया है, या इसको अच्छा समझा है, या इबादत करार दिया है। अगर ऐसा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी हुस्नो गम में मुब्तला होकर गुजार देते। हालांकि आप शरह सदर के साथ मुस्कुराती पेशानी और फरहाओ शादा रहते थे। रही ये बात कि हिंद बिन अभी हाला की हदीस में आता है कि आप मतवासिल अखजान थे, तो ये हदीस सही नहीं, ये रिवायत है बड़ी मशहूर कि अल्लाह के नबी हमेशा दुखी रहते थे। इसका उर्दू तर्जमा यह है, इसकी इसनाद में एक रावी मजहूल है और अल्लाह के नबी की सिफत के भी खिलाफ है। इसके बरक्स तो साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा मुस्कुराते थे, स्माइली फेस था आपका। तो आप मतवासिरुल अहज़ान कैसे हो सकते थे जबकि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया के तफक्कुरात और इसके असबाब से महफूज रखा था, कुफार पर गम करने से मना किया था, आपकी नई पुरानी खताएं माफ़ फरमा दी थी, फिर आपको गम कैसे और क्यों होता, किस रास्ते से आपके दिल तक पहुंचता जबकि दिल जिक्र से मामूर था। जिक्र वाले के दिल में भी गम नहीं आता, पीछे भी पढ़ चुके हैं। जबकि दिल जिक्र से मामूर रहता था, इस्तकामत से पुर और हिदायत रब्बानी से सरशार थे। आपको अल्लाह के वादे पर इत्मीनान था, इसके अहकाम और अफाल पर आप राजी थे, आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। शिमाइल तिरमिजी बड़ी मारूफ किताब है, उसमें है अद्दहौकल किताल। जो शख्स भी सीरत नबी को पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि आप बातिल को ख़त्म करने, खुल्क और अज़्तिराब और तफक्कुरात को, रंजो फिक्र वगैरह को ख़त्म करने के लिए आए थे। ये जो लफ्ज़ है ना अरबी का, इसका भी यही मतलब है, यानी ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सारे गम कत्ल हो जाएं। आप नफूस को शकूक व शुबहात, शिर्क व हैरत और इज़्तिराब से आज़ाद करने, मसाइब और हलाकतों से बचाने के लिए आए थे। इसी तरह अल्लाह ताला के इंसानियत पर कितने बड़े एहसानात हैं। एक हदीस में आते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है कुल्लु कल्बिन हज़ीन, हर हुज़न वाले दिल को। इसकी भी इसनाद मालूम नहीं, ना इसके रावी मारूफ हैं, इसकी सेहत पर भी शुबह, यानी हदीस दुरुस्त है भी कि नहीं, क्योंकि बज़ाहिर ये शरा के ख़िलाफ़ है। और अगर इसे सही भी मान लिया जाए तो इसकी तौजीह ये है कि हुज़न एक मुसीबत है जिसके ज़रिए अल्लाह बंदे को आज़माता है। अगर बंदा सब्र करे तो अल्लाह को इससे मोहब्बत होगी। लेकिन जो लोग हुज़न की मदाख करते हैं और ये कहते हैं कि दुखी रहो, और ये भी एक बहुत बड़ा शोशा है जो दीन के नाम पे छोड़ा जाता है कि दीनदार हंस बोल नहीं सकते और मजाक तो वो कर ही नहीं सकते, और वो खुश तो रह ही नहीं सकते, अच्छे कपड़े तो पहन नहीं सकते, अच्छे खाने तो खाएंगे नहीं। याद रखिए ये रहमानियत की एक बिगड़ी हुई किस्म है। और ये कहते हैं कि शरा में वो पसंदीदा है वो गलती पर हैं, बल्कि इसकी ममानियत आई है, इसके खिलाफ हुक्म आया है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से रसूल भेजे, किताब नाजिल की, इस पर खुश होना चाहिए और अल्लाह की हिदायत का शुक्र गुजार होना चाहिए। और एक हदीस में है कि इज़ा हब्बल्लाहु अब्दन अब्दन नसब फ़ी कल्बिही नायहतन व इज़ा अबग़ज़ा अब्दन जअल फ़ी कल्बिही मिज़मारन, यानी इसका मतलब यही है। हालांकि ये हदीस नहीं है, ये इसराइली असर है, और कहते हैं कि तौरात का असर है और इसका माना सही है। मुराद क्या कि ये मोमिन अपने गुनाहों पर गमगीन होता है, फासिक व फाजिर लहो लाप में हंसी मस्ती में मदहोश रहता है, यानी मोमिन को तो अपने गुनाह रुला सकते हैं, दुखी होगा बंदा तो अपने गुनाहों पे और नेकियों के छिनने पे होगा, और जो बुग़स वाला शख्स है जिसके दिल में गुनाह फासिक है वो फिर अपने दिल को मजमार, मजामीर कहते हैं गाने बजाने की चीज़ों को, यानी वो कहते हैं कि म्यूज़िक इज़ फूड ऑफ सोल, यानी मौसे की रूह की ग़ज़ा, इस तरह के जुमले बोलता है। सालेहीन का दिल जो टूटता है तो इस बिना पर कि इनसे गुनाह हो जाता है, बस गलतियाँ हो जाती हैं, बखिलाफ़ गुनाहगारों के कि इनका गम दुनिया, इसके फ़वाद और इसकी शहवात, इसकी लज्जतें और दुनियावी अगराज के फौत होने पर होता है। खुलासा क्या है कि मोमिन नेकियों के मवाकों के छुटने पर रोता है और फासिक दुनिया की चीज़ों के नफ़ों से महरूम होने पर रोता है। इनका गम और रंजो फिक्र दुनिया के लिए होता है, इसी वजह से होता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देख लें, जहाँ तक हज़रत याकूब के बारे में कुरान का ये बयान है कि इनकी आंखें हुज़न से सफ़ेद हो गईं, तो वो खबर है कि इनकी ये हालत बेटे की जुदाई की वजह से हो गई थी। किसी चीज़ की इत्तला उसके अच्छा होने यानी इस्तेहसान जिसके हुक्म पर दलील नहीं होती। हमें तो ये हुक्म है कि हुज़न से अल्लाह की पनाह मांगे, क्योंकि ये एक तारीक रात है जो बुलंदियों के रास्ते की रुकावट है। अरबाब सलूक का इजमा है, अरबाब सलूक कहते हैं जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, कि दुनिया का हुज़न गैर महमूद है। अबू उस्मान अल जबरी कहते हैं, हुज़न हर सूरत में फजीलत है और मोमिन के लिए इजाफा है अगर मासीयत का सबब ना हो। वजह यह कि हुज़न से तख़सीस नहीं होती तो छुटाई तो हो जाती है जी, यानी फिर लोग अपनी असल पे आते हैं, छट जाते हैं। वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, इनके इस कौल की तौजीह है कि बिला शुबा हुज़न आजमाइश और बला है, वह रंजो फिक्र और मर्ज़ की मानिंद है, लेकिन मनाजिल सलूक में से नहीं, यानी अल्लाह की तरफ सफ़र करने में दर्जे नहीं बुलंद होते। बस आपको खुशी और इंशराह हासिल करना चाहिए, अल्लाह से अच्छी ज़िंदगी, खुशगवार जीस्त, दिल की सफाई और खुशी और शादमानी की दुआ कीजिए, क्योंकि नेमतें जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। बस लोगों का कहना है कि दुनिया में जो जन्नत है यानी शुक्र की और तहदीस नेमत की, जो इसमें दाखिल ना हुआ वो आखरत की जन्नत में भी दाखिल ना होगा। इब्ने तैमिया की तरफ इस कौल को मंसूब किया जाता है। सिर्फ़ अल्लाह ही से इसकी दुआ की जा सकती है कि वो हमारे सीनों को यकीन के नूर से भर दे, हमारे कलूब को सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे और हमें तंगी और मशक्क़त की ज़िंदगी से बचाए। तो खुलासा क्या निकला पूरी बात का, क्या आपको मुझे अल्लाह से गम मांगने नहीं है, आ जाए तो सब्र करना है बस। ये हर वक्त दुखी रहना, रोते रहना, न शुक्रापन करना, ये नहीं पसंदीदा। हालांकि बाज़ लोग दीन के नाम पे ये सब पेश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तो लोग और भी दीन से दूर भागेंगे। तो ज़रा सा रिकैप कर लीजिए इस मौजू का, ये आखिरी टॉपिक है। हुज़न क्या है? तलब के शोले का ठंडा पड़ना, मायूसी, इसको लिख लीजिए बस। आपको ख्वाहिश कोई नहीं, ना अच्छे कपड़ों की, ना खानों की, ना आपको पैसे से प्यार, तो आपको फिर अजर किस बात का सदका देने का? इस तरह हिम्मत में कमी होना, इंसान का गमगीन होना। इसी तरह हुज़न और गम में क्या फ़र्क है? गम और हम मुस्तकबिल की फिक्रें होती हैं और हुज़न माजी की गमनाक बातें और यादें। हम और हुज़न के असरात क्या पड़ते हैं इंसान पे? पहली बात है कि मनफी तर्ज अमल शुरू होता है, नेगेटिविटी आ जाती है। आजमाइश और बला में इंसान अपने आप को शिकार समझता है और उसकी ज़िंदगी मकदर हो जाती है, यानी उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ना जीने वाली ज़िंदगी होती है। इंसान की तरक्की की राह में रुकावट होती है ये चीज़, कुव्वत फैसला ख़त्म हो जाती है ऐसे लोगों में से, और ज़िंदगी की खुशी और मुसरत हसरत और यास में तब्दील हो जाती है। आप देखिए, कुछ को ना आए की खुशी ना गए का गम। आप ऐसे स्पार्ट चेहरे से बैठेंगे तो दुनिया में आपके काम कैसे होंगे? और सूरत आल इमरान 139 में अल्लाह ने कहा, वला तहिनो, और ना तुम कमज़ोर पड़ो ना गम कहो, और ख़ास तौर पर दुश्मन के मुकाबले में कमज़ोर पड़ना ये तो बहुत ही नापसंदीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, आपकी मसाइब में घिरी हुई ज़िंदगी मगर शादाओ फरहाँ, इतने सदमे इतने गम जो पहले दिन इंट्रो में दिए थे याद कीजिए। हर वो गम जो किसी भी शख्स को मिले वो सारे के सारे आपको मिल गए, लेकिन आप मुस्कुराते रहे। पसंदीदा हुज़न कौन सा है? जो किसी इबादत चैतात के काम के फौत होने या गुनाहों में पड़ने से मिले, इस पे गम मनाया करें कि मेरी फजर छुट गई, मेरे शवाल के रोज़े नहीं पूरे हो रहे, गीबत हो गई, चुगली हो गई, मैंने बेपर्दगी कर ली, मैंने गंदी चीज़ें की, इस पे दुखी रहा करें। हमसे मतलूब कह के अल्लाह ताला से गम आलाम और हुस्नो कर्ब से बचने की दुआएं करें। कल के सेशन में बहुत सारी दुआएं आएंगी इंशाल्लाह, उन्हीं में से ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी, आमीन कहकर इस सेशन को पूरा करते हैं। शायद हमारी आज की ये दुआएं किसी का डिप्रेशन दूर कर दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्ज़ी वल कसल वल जुबनी वल बुख्ली वदलाए दैनी वगलबतिर रिजाल। तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिम हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ गमो अलम से, आजिज़ी से, सुस्ती से, बुजदिली से, बुखल से, कर्ज़ चढ़ जाने से और लोगों के गलबे से। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे गमों से बचाए और वो दुआ तो फिर बड़ी ही हसीन है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे इनको। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वअब्नु अब्दिक वअब्नु अमतिक नासियति बियदिक मादिन फिय हुक्मुक अदलुन फिय क़दाउक अस्सलुक बिकुल इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अल्लमतहू अहद मिन खल्किक औ अनज़लतहू फी किताबिक अव इस्तासरत बिही फिल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजल्लल कुरान रबी क़ल्बी। आमीन कहिए। मैं दुआ की नीयत से ये पढ़ रही हूँ कि सब सुनने वालों के अल्लाह दुआएं कबूल फरमा ले। व नूर सदरी व जिला हुजनी व जहाब हम्मी। ए अल्लाह मैं तेरी बंदी, और कोई मर्द है तो मैं तेरा बंदा। ये कहिए अल्लाह को, मैं तेरे बंदे की बेटी या बेटा हूँ और तेरी बंदी की बेटी या बेटा हूँ। मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मेरे बारे में तेरा हुक्म जारी है और मेरे बारे में तेरा फैसला अदल वाला है। मैं तुझसे तेरे हर उस खास नाम के साथ सवाल करती हूँ जो तूने खुद अपना नाम रखा, जैसे अपनी किताब में नाजिल किया या अपनी मखलूक में से किसी को सिखलाया है, या इल्मुल गैब में इसे अपने पास रखने को तरजीह दी है कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे और मेरे सीने का नूर और मेरे गम को दूर करने वाला और मेरे फिक्र को ले जाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।